सुनहरी अपने कमरे में खुद से बात कर रही थी। रूपाली उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर उसकी बात सुन रही थी। सुनहरी की बातों से रूपाली को पता चला कि जन्नत बाजार घाटे में चल रहा था। तो ताई ने ये बात मुझसे छुपाई कि पिछली कई डील फेल हो गई और जन्नत बाजार घाटे में चल रहा था। वो साहब सच कह रहे थे, ये मुझे कुछ नहीं समझती। लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं है रूपाली, यही सही मौका है ताई से बात करने का। मंत्री जी के बेटे को जन्नत पसंद आई हुई है, मुंह माने कीमत देने को भी तैयार है। बोलती हूँ ताई को कि इस घाटे से उभरने का यही सही वक्त है। उसे जितने दिन अपने पास रखना होगा रख लेगा, बाद में वो भी आगे उसे कहीं ना कहीं भेज ही देगा। इसी बहाने उस जन्नत से छुटकारा मिल जाएगा। रूपाली बाहर खड़ी होकर सोच रही थी, तभी सुनहरी अपने कमरे से बाहर निकली और रूपाली को वहां खड़ा देखकर बोली, अरे रूपा, तू बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आओ ना। रूपाली ने रोने का नाटक करते हुए कहा, ताई, अब तुम भी मुझे पराया समझने लगी ना। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि जन्नत बाजार घाटे में चल रहा है। निक उधर से गुजर रहा था, उन दोनों को साथ देखकर वो भी खिड़की के पास जाकर चुपके से उनकी बात सुनने लगा। सुनहरी ने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तू परेशान हो रूपा। पहले मैं तेरी बात नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे भी इन साहब लोगों पर थोड़ा शक होने लगा है। जब से ये आए हैं एक भी डील कामयाब नहीं हुई है। अपनी ही किस्मत खराब है तो इन साहब लोगों पर इल्ज़ाम लगाने से क्या होगा। तुमने कहा था ना कि जन्नत तेरे लिए लकी है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो वो लड़की हमेशा से ही मनहूस लगती है। ताई, मेरी बात माने तो एक बात कहूँ। रूपाली के पूछने पर सुनहरी ने हामी भरी। वो उसे कमरे में ले आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, देख ताई, तेरी छोटी बहन होने के नाते कह रही हूँ। अपना कोई बेटा तो है नहीं जो हम बुढ़ापे में खाना डालेगा, चार धाम ले जाएगा, ना ही उम्र ढलने के बाद कोई काम आएगा। ताई, मंत्री जी के बेटे को जन्नत पसंद आ गई है, तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। रूपाली की बात सुनकर सुनहरी नाराज हो गई और उसने उसका हाथ झटकते हुए कहा, ये कैसी बात कर रही है रूपा, भूल गई तुम कि जन्नत बोल नहीं सकती। आज से 25 साल पहले जो मेरी बहन के साथ हुआ वो मैं उसके साथ कैसे होने दूं। बस ताई, तेरी इसी बात का फायदा उठाती है वो। मत भूल कि तेरी बहन को भी इस धंधे में आना ही पड़ा था, तेरी कुर्बानियां कोई काम नहीं आई। देख, अब जन्नत ही इस जन्नत बाजार को घाटे से निकाल सकती है। आज रात को मंत्री जी का बेटा आने वाला है, तुम बताओ तो सही कितने पैसे चाहिए। उतने पैसे देगा वो, अरे माला मार कर देगा वो हमें, बस जन्नत उसे चाहिए। लेकिन रूपाली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं ताई, सोच ले अगर जन्नत बाजार इसी तरह घाटे में चलता रहा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि दो वक्त के खाने के भी लाले पड़ जाएं, रूपाली ने सुनहरी की बात काटते हुए कहा। सुनहरी जन्नत बाजार के चल रहे घाटे के बारे में सोचा और ना चाहते हुए भी उसे रूपाली को हाँ बोलनी पड़ी। उसकी हाँ सुनकर रूपाली के चेहरे पर खुशी थी। वहीं निक बाहर से उन दोनों की सारी बात सुन रहा था। उनकी बातचीत पूरी होते ही वो तुरंत वहां से हट गया। इन लोगों से और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती, बेचारी जन्नत। निक अपने ख्यालों में खोया था कि तभी उसके पास आलिया का फोन आया। उसने उसे तुरंत घर आने को बोला। निक भी आलिया के इस तरह बुलाने से सब कुछ भूलकर घर चला गया। निक घर आकर देखा कि परी वहां घर आई हुई थी और उसके साथ में एक 7 साल की बच्ची भी थी। निक परी को वहां देखकर हैरान हो गया। निक ने हैरानी से कहा, परी, तुम यहाँ कैसे आ रही हो और तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया। आलिया ने कहा, भाई वो मैंने। निक ने कहा, आलिया, मैंने मना किया था ना तुम्हें, हम यहाँ सीक्रेटली रह रहे हैं, फिर तुमने परी को यहाँ क्यों बुलाया, और ये बच्ची, इसे भी यहाँ लेकर आ गई। मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ इंडिया में आ रही हो और मुझे नहीं बताया। जीजू, आप गुस्सा करना बंद करोगे, मुझे नहीं पता था कि आप लोग कोलकाता में हो। आपके जाने के बाद ताऊजी का कॉल आया था, उनकी तबीयत काफी खराब थी तो उनसे मिलने यहाँ चली आई। यहाँ मैं इस बच्ची से मिली और वो मुझसे घुल मिल गई। कल आलिया से कॉल करते टाइम पता चला कि आप लोग भी कोलकाता में ही हो, तो मिलने आ गई। परी ने उसे यहाँ आने का रीजन बता दिया। निक ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि ये तुमसे घुल मिल गई, लेकिन इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। परी ने कहा, जीजू, ये निवृत्ति है, बड़े पापा के पास वाले घर में रहती है, अक्सर घर पर आती रहती है। इसने मेरे फोन में मेरी और प्रियल्दी की फोटोज देखी, उसे देखकर इसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं तो हैरान ही रह गई। उसकी बात सुनकर निक ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसमें अपनी और प्रियल की फोटो दिखाते हुए पूछा, बच्चे, जानते हो आप इसे। निवृत्ति ने कहा, हाँ अंकल, ये तो प्रियल मैम है, हमारी स्कूल में पढ़ाती थी। और कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप। मैं शिमला के सेंट मेमोरियल स्कूल में पढ़ती थी। बोलते हुए निवृत्ति अपना टैबलेट निकालकर उसमें उन लोगों के साथ प्रियल की फोटोज दिखाई, जिसे देखकर निक हैरान हो गया। उसके अंदर एक वीडियो भी था जिसमें निवृत्ति प्रियल को फूल दे रही थी। निक ने जल्दी से वीडियो प्ले किया। निवृत्ति ने प्रियल को फूल देते हुए कहा, हैप्पी टीचर्स डे प्रियल मैम। थैंक्स निवृत्ति, प्रियल ने मुस्कुराते हुए कहा और निवृत्ति के गाल पर एक किस दिया।
तभी उसके पास वाली एक टीचर ने कहा, प्रियल आज तुम्हें सबसे ज्यादा गिफ्ट्स मिले हैं, थोड़े ही टाइम में तुम सबकी फेवरेट टीचर बन गई हो। निवृत्ति ने कहा, प्रियल मैम मेरे भी फेवरेट हैं। प्रियल ने जवाब देते हुए कहा, हाँ और तुम सभी बच्चे मेरे फेवरेट हो। इसी के साथ वीडियो खत्म हो गया। निक प्रियल को इतने दिनों बाद देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। आलिया ने कहा, इसका मतलब प्रियल शिमला में है। निक ने कहा, पर ये फोटोज और वीडियो तो कुछ महीने पुरानी है। बच्चे क्या आपकी प्रियल मैम अभी भी आपको पढ़ाती हैं? निवृत्ति ने कहा, पता नहीं अंकल, कुछ टाइम पहले ही मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था तो हम कोलकाता आना पड़ा, लेकिन मेरी मेरे फ्रेंड से बात होती रहती है। उन्होंने बताया कि मैम 3 महीने पहले ही स्कूल छोड़कर जा चुकी हैं। परी ने कहा, जीजू अगर हम चाहें तो निवृत्ति के स्कूल से पता चल सकता है कि प्रियल दी ने दूसरा कौन सा स्कूल ज्वाइन किया है। निवृत्ति की बात सुनकर आलिया ने सोचा, वैसे जन्नत भी तो जन्नत बाजार में पिछले 2.5 महीने से है, तो फिर वो प्रियल क्यों नहीं हो सकती? परी ने एक्साइटेड होकर कहा, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा दी से मिलने का। जीजू तो फिर चले हम शिमला। निक परी को कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसके पास अंकित का कॉल आया। निक साइड में जाकर कॉल पिक किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जन्नत के बारे में परी को पता चले, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि जन्नत और प्रियल दोनों एक जैसी लगती हैं। कॉल पिक करते ही निक ने कहा, अंकित एक गुड न्यूज है, प्रियल शायद शिमला में है। अंकित ने कहा, न्यूज तो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास में एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। सुनहरी और रूपाली ने एक मंत्री के बेटे को जन्नत को बेच दिया है, और शायद कल रात को वो उसे जन्नत बाजार से ले भी जाए। निक ने चौंकते हुए कहा, मैंने रूपाली और सुनहरी को बात करते हुए सुना था, तब मुझे लगा था कि वो लोग ऐसे ही प्लानिंग कर रहे हैं। वो जन्नत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं, ये तुम भी जानते हो। निक ने उदास होकर कहा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक अच्छी खबर के साथ इतनी ज्यादा बुरी खबर भी सुनने मिल सकती है। मिलकर बताता हूँ कि क्या कर लेंगे। अंकित ने कहा, मैं संभाल लूंगा निक, तुम्हें 5 साल बाद प्रियल का पता चला है, तुम शिमला जाओ और पता लगाओ कि वो कहाँ पर है, इससे पहले की देर हो जाए।
लेकिन मैं जन्नत की जिंदगी भी तो बर्बाद नहीं होने दे सकता। उस वीडियो को देखकर लग रहा था कि प्रियल अच्छे हालात में है, लेकिन जन्नत नहीं, मैं आ रहा हूँ, कहकर निक ने कॉल कट कर दिया। निक वहां से बाहर जाने के लिए निकल रहा था तभी प्रांजल उसके पास आई। क्या हुआ जीजू, आप ऐसे भागकर कहां जा रहे हो? प्रांजल ने उसे रोकते हुए पूछा। निक ने कहा, देखो परी, मेरा इस वक्त कहीं और होना ज्यादा जरूरी है, प्रियल दी को ढूंढने से भी ज्यादा। निक ने परी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। परी ने आगे कहा, देखिए जीजू, आपने पिछले 5 सालों में कभी मेरी दी को ढूंढने की कोशिश नहीं की, मैंने आपसे एक बार भी सवाल नहीं किया और आपके हर फैसले की हमेशा रिस्पेक्ट की, लेकिन आज जब दी का पता चल गया है तब भी आपके लिए काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं परी, मैंने कब मना किया कि मैं प्रियल को ढूंढने नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त किसी की जान का सवाल है, और सच कहूं तो वो भी उतनी ही मासूम है जितनी कि तुम्हारी दी। अगर आज मैं नहीं गया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, प्रियल को सब पता चलेगा तो वो मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगी, और वो ज्यादा मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर प्रांजल नाराज हो गई। जीजू, मैं शाम के 7 बजे बस स्टॉप पर आपका इंतजार करूंगी, आज आपको अपने काम और मेरी दी में से एक को चुनना होगा, उसने गुस्से में कहा। उन दोनों के बीच बहस होता देख आलिया उनके पास आई और कहा, नहीं परी, तुम भाई को गलत समझ रही हो। आलिया दी, मैं जीजू को गलत नहीं समझ रही, लेकिन मुझसे अब नहीं रुका जाएगा, जब दी का पता चल गया है तो मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती, मैं आपका इंतजार करूंगी जीजू। परी अपनी बात कहकर उस बच्ची के साथ वहां से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर निक और ज्यादा परेशान हो गया और जन्नत बाजार में जाने के बजाय सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आलिया ने उसे परेशान देखकर उसके पास आकर कहा, क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब तो प्रियल का पता लग चुका है। आलिया, मैंने परी के सामने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरा जन्नत बाजार में होना बहुत जरूरी है। अभी कुछ देर पहले अंकित का कॉल आया था और उसने बताया कि रूपाली और सुनहरी ने जन्नत को बेच दिया है। आज अगर जन्नत को रास्ते में से नहीं बचाया गया तो फिर तुम सोच सकती हो कि उसके साथ क्या हो सकता है, बोलते हुए निक की आवाज भारी हो गई। आलिया ने ये सुना तो वो भी सन रह गई। प्रांजल की बातों से भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर आज वो उसके साथ नहीं गया तो मामला और भी बिगड़ सकता था।